नमस्ते, मैं आराफू, नाइन नॉट ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, एसेंशियल मैथमेटिक्स फॉर गेम्स एंड इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस थर्ड एडिशन। त्रि आयामी गेम प्रोग्रामिंग और रियल टाइम ग्राफिक्स के लिए गणित का व्यावहारिक पाठ है। जेम्स एम वैन वर्थ और लास एम बिशप ने इसे उन प्रोग्रामरों के लिए बनाया है जिन्हें अमूर्त गणितीय सूत्रों को इंजन, एनिमेशन, रेंडरिंग और सिमुलेशन के काम में बदलना है। पुस्तक का उद्देश्य केवल वेक्टर या मैट्रिक्स की परिभाषाएं देना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि स्क्रीन पर वस्तु की स्थिति, दिशा, गति, रंग और प्रकाश वास्तव में किन गणनाओं से तय होते हैं। तीसरा संस्करण शेडर आधारित ग्राफिक्स पाइपलाइनों और अधिक यथार्थवादी सामग्री तथा लाइटिंग के संदर्भ में संशोधित है। इसकी शुरुआत कंप्यूटर संख्या निरूपण और फ्लोटिंग पॉइंट की सीमाओं से होती है, फिर रेखीय बीजगणित, रूपांतरण, ओरिएंटेशन और इंटरपोलेशन तक बढ़ती है। आगे कैमरा प्रोजेक्शन, प्रोग्रामेबल शेडिंग, रास्टराइजेशन, रैंडमनेस, ज्यामितीय इंटरसेक्शन और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को एक ही कार्यप्रवाह के हिस्सों के रूप में रखा गया है। इसलिए यह शुद्ध गणित की किताब नहीं, बल्कि गणित और गेम इंजन कार्यान्वयन के बीच का तकनीकी सेतु है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, फ्लोटिंग पॉइंट से वेक्टर और मैट्रिक्स तक विश्वसनीय गणना की आधारशिला। पुस्तक का एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है कि वह सीधे त्रिआयामी दृश्य से शुरू नहीं करती। पहले कंप्यूटर में संख्याओं के निरूपण, विशेषकर IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट मानक पर ध्यान दिया गया है। गेम कोड में वास्तविक संख्याएं सीमित परिशुद्धता में रखी जाती है, इसलिए तुलना, राउंडिंग और बहुत छोटे या बहुत बड़े मानों की समस्याएं दृश्य त्रुटि, अस्थिर भौतिकी या टूटे हुए इंटरसेक्शन परीक्षण का कारण बन सकती है। यह पृष्ठभूमि बताती है कि गणितीय रूप से सही दिखने वाला सूत्र भी मशीन पर सावधानी मांगता है। इसके बाद बिंदु और वेक्टर के अंतर को कार्यात्मक ढंग से स्थापित किया जाता है। बिंदु स्थान बताता है, जबकि वेक्टर दिशा, विस्थापन या वेग जैसे परिमाण को व्यक्त करता है। डॉट प्रोडक्ट कोण और प्रकाश की तीव्रता से जुड़ता है, तथा क्रॉस प्रोडक्ट सतह के नॉर्मल और स्थानीय अक्ष बनाने में उपयोगी होता है। मैट्रिक्स इन अलग अलग क्रियाओं को संगठित करते हैं, जिससे स्केल, रोटेशन और ट्रांसलेशन को संयोजित किया जा सकता है। पुस्तक का लाभ यह है कि रेखीय बीजगणित को परीक्षा के प्रतीकों की तरह नहीं, गेम ऑब्जेक्ट के स्थानिक व्यवहार की भाषा की तरह प्रस्तुत किया जाता है। पाठक यह समझ सकता है कि मैट्रिक्स का क्रम क्यों मायने रखता है और होमोजीनियस निर्देशांक ट्रांसलेशन को उसी रूपरेखा में क्यों लाते हैं। दूसरा, एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन और ओरिएंटेशन से वस्तुओं की स्थिति तथा घुमाव नियंत्रित करना, गेम दृश्य में किसी मॉडल को केवल एक जगह रखना पर्याप्त नहीं होता। उसे स्थानीय निर्देशांक से विश्व निर्देशांक में लाना, किसी अभिभावक ऑब्जेक्ट के साथ चलाना, सही दिशा में मोड़ना और कैमरे के सापेक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। पुस्तक रेखीय और एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से इस संरचना को स्पष्ट करती है। स्केल, रोटेशन और ट्रांसलेशन को अलग समझने के बाद उनके संयुक्त प्रभाव को मैट्रिक्स के जरिए लागू किया जाता है। इससे दृश्य पदानुक्रम में होने वाली सामान्य समस्या समझ आती है, जहां बच्चे ऑब्जेक्ट की गतिमाता ऑब्जेक्ट के रूपांतरण पर निर्भर होती है। ओरिएंटेशन के लिए पुस्तक मैट्रिक्स, यूलर एंगल, एक्सिस एंगल और क्वार्टनियन जैसे कई निरूपणों की चर्चा करती है। इनका साथ रखा जाना उपयोगी है, क्योंकि हर विधि का प्रयोग संदर्भ पर निर्भर है। यूलर एंगल संपादन और सहज नियंत्रण के लिए सुविधाजनक हो सकते हैं, पर क्रम और जिम्बल लॉक जैसी कठिनाइयां पैदा कर सकते हैं। क्वार्टनियन कॉम्पैक्ट घुमाव और स्मूथ इंटरपोलेशन के लिए उपयुक्त होते हैं, लेकिन उनका अर्थ केवल चार संख्याएं याद कर लेने से स्पष्ट नहीं होता। पुस्तक इन निरूपणों को रूपांतरण की समस्या से जोड़ती है, परिणाम स्वरूप पाठक यह चुनने की बेहतर स्थिति में आता है कि कैमरा, चरित्र, वाहन या भौतिक वस्तु के लिए कौन सा ओरिएंटेशन मॉडल उचित है और अलग निरूपणों के बीच रूपांतरण कब जरूरी होगा। तीसरा, इंटरपोलेशन, कर्व और स्प्लाइन द्वारा निरंतर एनिमेशन तथा कैमरा गति। रियल टाइम गेम में अधिकांश परिवर्तन दो निश्चित अवस्थाओं के बीच होते हैं, जैसे चरित्र की दो मुद्राएं, कैमरे के दो स्थान या किसी प्रकाश के दो रंग। पुस्तक इंटरपोलेशन को इसी व्यावहारिक समस्या का गणितीय समाधान मानती है। रैखिक इंटरपोलेशन दो मानों के बीच सरल मिश्रण देता है और समय के साथ स्थिति बदलने के लिए उपयोगी है, लेकिन केवल सीधी रेखा वाला परिवर्तन हमेशा प्राकृतिक गति नहीं बनाता। कैमरा पथ, चरित्र की चाल और समय आधारित प्रभावों में गति की दिशा तथा त्वरण में निरंतरता चाहिए होती है, इसलिए कर्व और स्प्लाइन की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। नियंत्रण बिंदुओं के सहारे डिजाइनर या प्रोग्रामर जटिल पथ को सीधे हर फ्रेम हाथ से निर्दिष्ट किए बिना नियंत्रित कर सकता है। पुस्तक का दृष्टिकोण यह भी संकेत देता है कि इंटरपोलेशन केवल स्थान के लिए नहीं है, रोटेशन, रंग, स्केल और अन्य एट्रीब्यूट भी परिवर्तनशील मान है, पर सभी के लिए एक ही मिश्रण विधि सही नहीं होती। उदाहरण के लिए ओरिएंटेशन को साधारण घटकवार तरीके से मिलाने पर अवांछित परिणाम आ सकते हैं। यह अध्याय एनिमेशन प्रणाली के पीछे छिपी निरंतरता को समझने में मदद करता है। पाठक गति को कीफ्रेम डेटा, समय पैरामीटर और कर्व मूल्यांकन की संयुक्त प्रक्रिया के रूप में देखता है, जिससे स्किंड चरित्रों और सिनेमेटिक कैमरों के कार्यान्वयन का आधार बनता है। चौथा, व्यूइंग प्रोजेक्शन और प्रोग्रामेबल शेडर पाइपलाइन में ज्यामिति को पिक्सेल बनाना। पुस्तक का ग्राफिक्स केंद्रित भाग यह स्पष्ट करता है कि त्रिआयामी गणित स्क्रीन पर द्विआयामी छवि कैसे बनता है। व्यूइंग और प्रोजेक्शन में कैमरा केवल एक वस्तु नहीं बल्कि निर्देशांक बदलने का नियम है। विश्व में रखे बिंदुओं को कैमरा स्पेस में व्यक्त किया जाता है, फिर प्रोजेक्शन उन्हें दृश्य आयतन और अंततः स्क्रीन के अनुकूल बनाता है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन दूर की वस्तुओं को छोटी दिखाने का प्रभाव देता है, जबकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन समानांतर आयाम बनाए रखता है। इन भेदों को समझना कैमरा क्लिपिंग और दृश्य विकृति से जुड़े बग ठीक करने के लिए आवश्यक है। इसके बाद पुस्तक प्रोग्रामेबल पाइपलाइन की ओर बढ़ती है, जिसमें वर्टेक्स एट्रीब्यूट, ज्यामिति, टेक्सचर, रंग और शेडर की भूमिकाएं जुड़ती हैं। वर्टेक्स शेडर प्रत्येक वर्टेक्स के रूपांतरण और डेटा तैयारी में भाग लेता है, जबकि फ्रैगमेंट शेडर लास्टराइजेशन से बने संभावित पिक्सलों का अंतिम रंग निर्धारित करता है। फिक्स्ड फंक्शन मॉडल और प्रोग्रामेबल मॉडल के अंतर को समझाने से पाठक केवल एपीआई कॉल याद नहीं करता, वह समझता है कि किस चरण में कौन सा डेटा उपलब्ध है और कौन सी गणना कहाँ करनी चाहिए। यह अध्याय गणित, ग्राफिक्स, हार्डवेयर और दृश्य परिणाम के बीच सीधा संबंध स्थापित करता है। अंत में लाइटिंग इंटरसेक्शन, रैंडमनेस और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से सक्रिय दुनिया का निर्माण पुस्तक रेंडरिंग को केवल मॉडल प्रदर्शित करने तक सीमित नहीं रखती। लाइटिंग के अंतर्गत एम्बियंट, डायरेक्शनल, पॉइंट और स्पॉट प्रकाश के अलग व्यवहार बताए जाते हैं। सतह का नॉर्मल, प्रकाश की दिशा, सामग्री के गुण और देखने की दिशा मिलकर यह तय करते हैं कि कोई सतह कितनी चमकीली या मंद दिखेगी। पर वर्टेक्स और पर फ्रैगमेंट लाइटिंग का अंतर गुणवत्ता तथा गणना लागत दोनों से जुड़ा है। टेक्सचर के साथ प्रकाश संयोजन, नॉर्मल मैपिंग, HDR और भौतिक रूप से आधारित लाइटिंग जैसे विषय इस आधार को आधुनिक रियल टाइम दृश्य तकनीकों तक ले जाते हैं। दूसरी ओर रैंडम नंबर अनिश्चितता का नियंत्रित स्रोत है। उनका उपयोग प्रक्रियात्मक विविधता, प्रभावों और गेम प्ले व्यवहार में हो सकता है, लेकिन वितरण तथा दोहराने योग्य परिणामों की समझ जरूरी है। इंटरसेक्शन परीक्षण यह निर्धारित करते हैं कि किरण, समतल, बॉक्स, गोला या अन्य ज्यामितीय इकाइयां संपर्क में हैं या नहीं। यही चयन दृश्यता और टकराव प्रणाली का मूल है। अंत में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बल, वेग, कोणीय गति और टक्कर प्रतिक्रिया की गणितीय भाषा देता है। इन विषयों को साथ रखने से पुस्तक दिखाती है कि विश्व का विश्वसनीय दिखना और उसका प्रतिक्रिया देना अलग समस्याएं नहीं है। दोनों के लिए सटीक प्रतिनिधित्व, उपयुक्त अनुमान और समय के साथ स्थिर गणना चाहिए। निष्कर्ष में यह पुस्तक उन गेम प्रोग्रामरों, ग्राफिक्स इंजीनियरों और तकनीकी कलाकारों के लिए सबसे उपयोगी है, जो त्रिआयामी सिस्टम को केवल इंजन या टूल के तैयार फंक्शनों से नहीं उनके गणितीय आधार से समझना चाहते हैं। आरंभिक पाठक को इससे वेक्टर, मैट्रिक्स, रोटेशन और कैमरा गणित का क्रमबद्ध प्रवेश मिलता है। मध्य स्तर के डेवलपर के लिए यह एनिमेशन कर्व, क्वार्टरनियन, शेडर डेटा प्रवाह, लाइटिंग और इंटरसेक्शन जैसे विषयों को फिर से व्यवस्थित करने का संदर्भ है। अनुभवी पाठक को हर अध्याय नया नहीं लगेगा, लेकिन व्यापक तकनीकी पुनरावलोकन के रूप में इसकी उपयोगिता बनी रहती है। इसकी विशेषता विषयों की सूची भर नहीं बल्कि उनकी निर्भरता का क्रम है। फ्लोटिंग पॉइंट सीमाओं से लेकर रूपांतरण, प्रोजेक्शन, रास्टराइजेशन और भौतिक सिमुलेशन तक पुस्तक बताती है कि गेम इंजन के अलग दिखने वाले भाग एक ही गणितीय ढांचे में कैसे मिलते हैं। कई गणित पुस्तकों में प्रमाण या अमूर्त सिद्धांत प्रमुख रहता है, जबकि कई ग्राफिक्स पुस्तकों में एपीआई और रेंडरिंग तकनीक का दबाव अधिक होता है। यह ग्रंथ इन दोनों के बीच व्यावहारिक संतुलन बनाता है। उदाहरणों, सहायक कोड और इंटरैक्टिव प्रदर्शनों की उपलब्धता इसके अध्ययन को प्रयोग से जोड़ती है। तीसरे संस्करण में प्रोग्रामेबल शेडर पाइपलाइन तथा आधुनिक लाइटिंग पर जोर इसे अपने प्रकाशन काल के रियल टाइम ग्राफिक्स परिवेश के अनुरूप बनाता है। इसलिए इसे किसी एक इंजन का त्वरित मार्गदर्शक नहीं बल्कि विभिन्न तकनीकों में स्थानांतरित होने वाली बुनियादी समझ विकसित करने वाली पुस्तक के रूप में पढ़ना चाहिए। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जेम्स एम आर एम वानबर्थ, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।